Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
सारे विद्यार्थियों को उन्होंने बोला, भैया बोले ये मेरे पुस्तक पर किसने, ये कलम किसने चलाई? बाकी सारे विद्यार्थी घबराए हुए थे, पता नहीं क्या किया है गड़बड़, आप गुरुजी दंड देंगे। सारे विद्यार्थी कहने लगे हमने नहीं किया, हमने नहीं। वो तो बुला लिया, बोले उसने किया है, वो पता नहीं पुस्तक में कुछ कर रहा था। गुरुजी ने बुलाया, बोले या कौन? बोले प्रभाकर आया। बोले प्रभाकर ये तुमने किया? हाँ बोले गुरुदेव हमने किया। बोले तुम समझ के किए कि ना समझ से? बोले समझ के। और उसी समय कुमारिल भट्ट कहते हैं आइए गुरुजी। आज कैसे देखो, वो गुरु हैं अपने शिष्य की उस प्रतिभा को देख करके इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको संबोधन दे दिया गुरु गुरु। हाँ। और उसके बाद आप जब कभी शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कहीं कहीं आपको सुनने को मिलता है गुरु मत गुरु मत गुरु मत। आज गुरु ने ही शिष्य को अपने मुख से कहा गुरु। और उसके बाद फिर जब भी प्रभाकर को बुलाना होता ना तो गुरुजी करके बुला देते हो। अब प्रभाकर खो गया और उस शिष्य को उन्होंने क्या बना दिया? गुरु गुरु। और ग्रंथों में भी आता है इति गुरु मतम। ये आपके हिंदू धर्म की विशेषता, आपके धर्म की ये विशेषता है। नारायण एक बार की बात है प्रभाकर की। प्रभाकर बड़ा प्रतिभावान बालक, जब वो बड़ा हुआ, विद्वान जब हुआ, तो अक्सर सारे विद्यार्थी बोलते थे कि गुरुजी ये प्रभाकर तो आपकी बात सुनता नहीं है और ये दिन भर आपका खंडन करता रहता है और ये ग्रंथों को भी निर्माण करता है, मेरे गुरुजी गलत बोलते हैं, आपका खंडन करता रहता है, आपका जो भी मत आता है उसका वो खंडन कर देता है। और उसके बाद भी आप उसको गुरु गुरु बोलते हो और इतना प्रेम करते हो और वो आपको मानता नहीं है, वो आपको बिल्कुल नहीं मानता है, आपके ऊपर बिल्कुल उसकी आस्था नहीं है और वो दिन भर आपका खंडन करता रहता है। आप ध्यान देना, ये बहुत गहरी बात सुना रहे हैं हम। आज गुरु का खंडन शिष्य कर रहे हैं, तो ऐसे कितने गुरु होंगे जो खंडन करने वाले शिष्य को भी अपने पास रखकर प्यार से उसको गुरु बुलाने वाले। आपका खंडन करता है और खंडन ऐसा नहीं जबरदस्त, वो बोलता है आप गलत बोलते हैं, ये गलत है, और वो उनकी सारी बातें काट कूट करके ठिकाने पर रख देता है वो। सारे लोगों ने उनकी शिकायत कर दी, बोले ये आपका शिष्य ये बिल्कुल आपके साथ रहने लायक नहीं है। कुमारिल भट्ट कोई सामान्य पुरुष थे? उन्होंने कहा चलो ठीक है, समय आने के बाद मैं तुमको दिखा दूंगा कि वो मेरे से कितना प्रेम करता है। उन्होंने क्या किया, एक योग की प्रक्रिया अपनाई और उन्होंने समाधि की अवस्था में पहुंच गए। और वो पूर्व नियोजित था, लोगों ने कहा कि कुमारिल भट्ट मर गए, सबको सूचना मिली अब मर गए, शरीर छोड़ दिया शरीर छोड़ दिया। अब सारे शिष्य लोग आए और सब लोग रोने लगे। अब कुमारिल भट्ट भी आया, वो भी तो प्रभाकर भी वहां पहुंच गया, प्रभाकर भी रोने लगा बैठ करके। अब सारे शिष्य कह रहे थे देखो जिंदे जी जब गुरुजी थे तो खंडन करता रहा है और अब चरण में बैठ करके रो रहा है। लेकिन लोगों को संदेह था कि जब आप गुरुजी का कर्मकांड करना है तो आप वो प्रभाकर गुरु के मत से कराएगा कि अपने मत से कराएगा, क्योंकि गुरुजी की सारी प्रक्रिया का तो खंडन कर दिया इसने। अब ये कर्मकांड करने की जब बारी आएगी तो अपने मत से करेगा कि गुरु के मत से करेगा, सबके मन में संदेह था। तो सब शिष्य लोग मित्र मंडल बैठी और कुमारिल भट्ट का अंतिम संस्कार करने के बारे में अंत्य विधि की चर्चा करने लगे। तो सब ने पूछा प्रभाकर को कि आप बताइए कि गुरुजी की विधि कैसे की जाए, क्योंकि हमेशा आपका विवाद रहा है। उठ करके खड़े हुए प्रभाकर और गुरु के चरणों में नमन किया और उन्होंने कहा भले ही मैं गुरु की बातों का खंडन करता था लेकिन गुरु तो मेरे गुरु थे कुमारिल भट्ट, और मैं उनके चरण में नमन करता हूं और जो गुरुजी ने कहा है वही सही है और उन्हीं के द्वारा उन्हीं की विधियों से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे ये बात बोली तो कुमारिल भट्ट
उठ के बैठ गए
और बैठ करके ताली बजाते हुए कहने लगे, जीतम 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 जीतम, मया जीतम, मैं जीत गया, मैं जीत। उन्होंने बोला था ना कि गुरु जी का मत सही है, उन्होंने बोला कि गुरु जी का मत सही है, तो प्रभु कुमारिल भट्ट बड़े प्रसन्न हुए और अपने शिष्यों को बोलने लगे, देखो मैं जीत गया, मैं जीत गया, जो मैं कहता था वही बातें मान रहा है, मैं जीत गया। लेकिन वो प्रभा कभी कम नहीं था, वही खड़ा था। उन्होंने कहा गुरु जी जीतम लेकिन मृत्वा जीतम आप जीत तो गए लेकिन मर के जीते, जिंदे जी नहीं, आपको जीतने के लिए मरना पड़ा। यहां जो गुरु और शिष्य का जो संबंध है हिंदू धर्म में, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं। आप अपने गुरु से विवाद कर सकते हैं, यहां संवाद कर सकते हैं, आप झगड़ा भी कर सकते हैं, आप उनका खंडन कर सकते हैं, ईश्वर के अस्तित्व पर आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं और उसके बाद भी आपकी आध्यात्मिक साधना आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप श्रद्धापूर्वक आप प्रश्न करते हैं, श्रद्धापूर्वक आप विवाद करते हैं और फिर उसका हल निकालते हैं। इसलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो हिंदू धर्म में अलौकिक संबंध, ऐसा दुनिया में कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए आज यहां गुरु और शिष्य मिलकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम गुरु और शिष्य, क्योंकि दो आधार स्तंभ है, अध्यात्म के आधार स्तंभ है, हम दोनों की आप रक्षा करो। अब यहां रक्षा और पालन का अर्थ क्या है, यहां आप स्थूल दृष्टि से आप अर्थ करेंगे ना, ओम सहना भवतु माने आप हमारी रक्षा करो। भैया रक्षा किससे? आपने परसों श्रवण किया था, अध्यात्म में बहुत सारे प्रतिबंध हैं, बहुत सारे प्रतिबंध हैं, व्याधि, स्त्यान, निद्रा, अविरति, आलस्य, प्रमाद, बहुत सारे प्रतिबंध हैं। सबसे बड़ा जो प्रतिबंध है आपके जीवन का यह अस्वस्थता, इसको व्याधि बोलते हैं। तो यहां पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ओम सहना भवतु, गुरु और शिष्य की आप रक्षा करो, माने किससे? इसी व्याधि से, कोई बीमारी ना आए, कोई जुखाम ना हो, कोई खांसी ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके अध्यात्म में प्रतिबंध। आपको बुखार आ गया, अब आप सत्संग करोगे क्या? आपको आप अस्वस्थ हो गए, आप जप नहीं कर पाओगे, आप ध्यान नहीं कर पाओ। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं गुरु और शिष्य स्वस्थ बना रहे, रोगादि से, आलस्य से, ये प्रमाद भी। देखो स्वस्थ होने के बाद भी आलस आ जाए तो आप स्वस्थ हैं, लेकिन आदमी को क्या लगता है, अरे छोड़ो आलस आ गया, छोड़ो कल चलते हैं, प्रमाद हो गया। प्रमाद का मतलब एक जगह छोड़े दूसरी जगह पर चले गए, आलस तो नहीं है, आना था सत्संग में और चले गए, घूमने चले गए, ये प्रमाद है। निद्रा, आप यहां सत्संग में बैठे हैं और सत्संग के समय आपको निद्रा भी तो आती है। कई लोग पूछते हैं महाराज सत्संग में या जब ध्यान में बैठे समय ही नींद क्यों आती है, आपको आती कि नहीं? है ना, जब सत्संग में बैठते हैं तो आपको नींद आती है, आ भी तो नहीं आ रही है एक बार मैं प्रेमपुरी सत्संग मंडल जो अंधेरी में, वहां स्वाध्याय में था मैं, सुबह सुबह गर्मी का समय था और सब स्वाध्याय में बैठ गए, पंखे चल रहे थे, एसी तो थे नहीं, और हल्की हल्की गर्मी, टेम्परेचर बढ़ा, वाह बहुत मजेदार, और मैंने देखा धीरे 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 सब सो गए सब सचमुच सब सो गए। तो मैं देखता रहा, एक दो, ओ हो हो ठीक है ठीक है। और जब सत्संग में कोई सोता है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है, किसी को देखता हूं ये सो रहा है तो ओह भाग्यशाली, क्योंकि नींद तो भाग्यशाली आदमी को आती है। अब मैं सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सो लेता हूं अब वो सब लोग आराम से सो रहे, पुस्तकें ऐसी बड़ी गोद में और मस्ती से। अब मैंने सोचा कि चलो मैं भी आंखें बंद किया और मैं आंखें बंद करके सोचा कि चलो मुझे भी आ जाए, लेकिन आप कोशिश करोगे तो नींद नहीं आती है। लेकिन जब मेरा प्रवचन बंद हुआ करीब करीब 5 मिनट तक तो सब लोग साइलेंट थे और हल्की सी किसी की नींद खुली तो उसने देखा कि स्वामी जी भी सो रहे हैं। उसने बगल वाले को जगाया, तीसरे को जगाया, चौथे को जगाया और उसके बाद सब मुझे बोलने लगे स्वामी जी सो रहे हो। मैंने कहा मैं सोया नहीं हूं, मैं तुम लोगों को जगाने के लिए मैं आंखें बंद कर दिया हूं। आप जब सत्संग में होते हैं, आप जप में होते उस समय आपको नींद आती है। और मैं आश्चर्य की बात बता दूं, सबको मैंने बोला कि भाई आप लोग सोते हो ना, बहुत सौभाग्य की चीज है। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि जो पुण्यशाली होता है उसी को नींद आती है, पापी आदमी को नींद कहां से आएगी। आप चाहे सत्संग में सोते हो चाहे आप अपने घर में, है वो पुण्य का काम। हाँ ध्यान देना, आप ज्ञान से वंचित रह जाते ये बात अलग है, लेकिन आपके पुण्य का क्षण जब उदय होता है ना तब आपको नींद आती है। जब ये बात मैंने उन लोगों को बोली तो इतने खुश हो गए, बोले महाराज आज तक तो सब लोग यही बोलते थे कि सत्संग में सोना पाप है और आप बोल रहे पुण्य। मैंने कहा तुम सो जाओ, आप प्रतिदिन सो जाओ। लेकिन आश्चर्य की बात वो मेरे ऊपर खुश भी हो गए सब लोग, आप मैंने बहुत अच्छी बात बोली। सब लोग तो उनको गाली देते थे, मैंने तो उनकी प्रशंसा कर दी, खुश हो गए। और इतने खुश हो गए कि उसके बाद फिर 15 दिन तक कोई सोया ही नहीं। आपको नींद आती है, नींद क्यों आती है मालूम है आपको? देखो हमारे जीवन में 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप जब सत्वगुण में होते हैं ना तब भी आपको नींद नहीं आती है, आप रजोगुण में होते तब भी आपको नींद नहीं आती है, आप जब तमोगुण में होते हैं तब आपको नींद आती है, और आप जब सत्संग में, आप जब जप में बैठते हैं और आप सच्चे अर्थों में आप जप कर रहे हैं, आपने आंख बंद किया या आप सत्संग कर रहे हैं, आपका मन चला गया सत्वगुण में। ध्यान देना, आपका मन कहां पहुंचा? सत्वगुण में। और बहुत आनंद आ रहा है जप में, बहुत आनंद आ रहा है सत्संग में, लेकिन उसी समय वहां 2 शाखाएं निकलती हैं, एक तमोगुण की और दूसरी रजोगुण की। यदि रजोगुण निकलता है तो आपका सत्संग छूट जाता है, और तमोगुण आता है तो आपको वो कहां ले जाता है? नींद में चला जाता है। तो आप इन दोनों में से क्या अच्छा समझते हो? आप ध्यान कर रहे, आप सत्संग कर रहे, ओहो बहुत आनंद आया, बहुत सत्संग में आनंद आ रहा है, और उस समय 2 शाखाएं फूटी, एक तमोगुण की और दूसरी, तो आप उन दोनों में से कौन सी पसंद करोगे? ईमानदारी से पहले मैं आपको दृष्टांत बता देता हूं, बाद में आप निर्णय करना। एक बार महर्षि महेश योगी अपने पंडितों का इंटरव्यू लेना चाहते थे, कुछ सिलेक्शन करना चाहते थे, योगी पाठ करने वाले, वेद पाठ करने वाले, सबका बहुत सारे सैकड़ों पंडित लोग वहां पर पहुंचे और सब लोग बड़े 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 भारी हॉल में सबको बैठाया गया और बताया गया कि 1 घंटे के बाद महेश योगी जी आएंगे और आपसे बात करेंगे, देखेंगे और आपका सिलेक्शन करेंगे। अब वहां तो बहुत बड़े बड़े लोग थे पंडित, अब वहां जाके कोई ध्यान कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, सब लोग बहुत व्यवस्थित बैठने हैं, क्या जाने कब किसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए। हर आदमी अटेंड, हर आदमी सावधान था कि मेरे ऊपर दृष्टि पड़े तो मैं योग्य साबित हो जाऊं। और घंटों के बाद अचानक एक व्यक्ति आया अंदर और उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों में से 10 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, और उन्होंने बता दिया ये। लेकिन आश्चर्य की बात, जब वो पढ़ रहे थे ना तो जिन 10 लोगों के नाम लिए गए वो सब सो रहे थे। ये सच्ची घटना है, वो 10ों उनको बगल वाले ने जगा दिया, ओह तुम्हारा नाम आ गया है, बगल वाले ने जगा के बताया वो तुम्हारा नाम आ गया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि इनका सिलेक्शन कैसे हुआ, अरे तो सो रहे थे, पहले भी सो रहे थे, अभी भी सो रहे हैं, और ये बहुत सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतने अलर्ट, और वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका कैसे हुआ? तो उन्होंने यही उत्तर दिया, भैया बोले अध्यात्म है, ये सारे लोग शरारत कर रहे हैं, कोई कान में अंगूठी कर रहा है किसी के, कोई धोती पकड़ के खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बोले तुम ध्यान तो करे लेकिन तुम्हारा मन नहीं था, इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन वो बेचारे आराम से सो रहे थे। बोले ये संभव है, ये अध्यात्म में आगे बढ़ने की संभावना है इसमें। आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते रजोगुण में गए तो आप उठ के टीवी ऑन कर लोगे। आप जप करते करते, अभी आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं और सत्संग श्रवण करते करते आपके मन में रजोगुण आ गया, रजोगुण, तो संभावना है कि आप कोई ना कोई बाना मार के उठ के चल दोगे। हाँ ऐसा होता है, आप सत्संग में बैठे हैं और इसी समय आपके मन में रजोगुण का प्रादुर्भाव हो गया तो आप उठ के चल दोगे। आप जप कर रहे हैं, रजोगुण उठा, आप माला छोड़ देंगे और तमोगुण आ गया तो अरे वहीं बैठ रहे हैं, फिर उठेंगे, फिर जप करेंगे आप। तो आप क्या चाहते हो, आप सत्संग श्रवण करते करते आप रजोगुण में जाना पसंद करोगे कि तमोगुण में? ये बातें जो है ना विचार की हैं। आपको अपेक्षा, आपको जा रहना है सत्वगुण में, लेकिन मान लो सत्वगुण में आप नहीं रह पा रहे तो आपको रजोगुण अच्छा है कि आपको तमोगुण अच्छा है? क्योंकि रजोगुण में जाओगे तो आपकी वासना और भटकेगी और आप उपद्रव खड़ा कर दोगे, और थोड़ा सो लोगे तो सोने में क्या उपद्रव है? सोने में वासना उत्पन्न नहीं होती है। आप दुनिया में भटकोगे तो वासना को पैदा करेगी दुनिया, और आप सो के जगोगे तो क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं, योग निद्रा। ये मैया ठीक बोल रही है, आप जब सत्संग में सोते हो तो योग निद्रा। लेकिन इतनी ज्यादा योग निद्रा अच्छी नहीं है। जो कैलाश आश्रम में जब मैं पढ़ता था, एक महात्मा थे रामदयाल नाम था उनका, और बड़े मजेदार महात्मा, नवयोग संत, और हम दोनों अगल बगल में थे, मैं सफेद कपड़े में था लाल कपड़े में, और वो क्या करते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे और 4 बजे उठ करके बैठ जाते थे और बैठ करके बड़े जोर जोर से सो हम सो हम सो हम और सो हम सो हम सो हम सो हम सो जाते थे। वो तो वहां के कोठारी जाए 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वहां 3 दिन यदि कोई वहां आरती में न जाए तो चौथे दिन उसको भोजन नहीं मिलता था, भोजन बंद, इतना डिसिप्लिन। वो आए और मैं था आरती के नीचे उतरा तो छड़ी लेके खड़े हो, मैं डर गया कि मेरी छड़ी लेके यह कोठारी जी क्यों खड़े हैं। बोले रामदयाल कहाँ है? तो मैंने कहा महाराज कमरे में होगा। बोले खोलो। खोला और वो दरवाजा बंद कर, तो कुंडी नहीं लगाते थे, अब वो सोहम कर धक्का दिया, अपने सो रहे हो जगा दिया, ओ महात्मा ये आरती का समय तुम सो रहे। वो उठकर बैठ गए और बोले सोहम सोहम। अरे सोहम नहीं, तुम आरती में क्यों नहीं आए? अरे बोले मैं तो योग निद्रा में था, बोले आरती में कहां से आता। लेकिन यहां श्रुति आपको सावधान करनी है, कहीं योग निद्रा आपका सोने का बहाना तो नहीं? ये निद्रा भी, आप बहुत ज्यादा सोएंगे, आप जब करते हो नींद आते जाए तो आप जब कब करोगे? आप सत्वगुण में बने रहे। हाँ इसलिए आपको नींद का त्याग करना बहुत आवश्यक है, नींद बाधा है। इसलिए निद्रा, पतंजलि ने कहा कि निद्रा इसका भी परित्याग, ये प्रतिबंध है आपको व्याधि से, तमोगुण से, प्रमाद से, इन सारे अध्यात्म के प्रतिबंधक जो चीजें हैं इससे हमारी रक्षा हो। हाँ ये ओम सहना भवतु का अर्थ है, आप ध्यान देना, ये कोई सामान्य अर्थ नहीं है। ओम सहना भवतु का अर्थ हुआ हमारा जो अस्वास्थ्य है, मन के रोग हैं, मन के विकार हैं, कामना, ये इन सारी चीजों से हमारी रक्षा हो। समझ में आया ना? ओम सहना भवतु, और अकेले की प्रार्थना नहीं, गुरु शिष्य और परम पूज्य महाराज श्री तो कहते हैं कि आवयो हो, सबकी, हम सब, हम सब माने दो दो समझना, स्त्री पुरुष, सारी दुनिया की स्त्रियां, सारे पुरुष, दुनिया के सारे शिष्य और सारे समष्टि प्रार्थना। आप जब ओम सहना भवतु जब आप बोलेंगे तो संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना बने आपकी, हे प्रभु संपूर्ण विश्व स्वस्थ बने, सुखी बने, निरोग बने, ये सारी उसके आप रक्षा करो। ये ओम सहनावतु। और नारायण यहां सहनो भुनक्तु, अब ये दूसरा साथ साथ पालन करे, पहले रक्षा करना और दूसरे वाक्य में पालन करना। पालन करने का मतलब क्या है? पालन करने का मतलब होता है कि आपको नींद तो नहीं आ रही है, आपको कोई रोग नहीं है, आपके जीवन में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भूख से तो आपको भूख तो नहीं है, रोग भी नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन इतने होने से आपका काम थोड़ी चलता है। इसको बोलते हैं गुणाधान। जैसे मैं आपको उदाहरण में समझा देता हूं, जैसे आप बीज डालते हैं जमीन के अंदर और वहां दो काम करते हैं। एक काम करते हैं कि उस बीज की आप रक्षा करते हैं, वहां रक्षा करते हैं अंकुर पैदा होने के पहले वहां कोई कीड़े मकोड़े न खा जाए, और अंकुर पैदा होने के बाद भी कीड़े मकोड़े न खाए तो आप उसको दवा डालते हैं, गाय भैंस से उसकी आप रक्षा करते हैं, ये उसका रक्षण करना है। और फिर क्या करते हैं? खाद डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं। खाद पानी डालना उसका पालन पोषण करना है, और कीटाणुओं से उसकी अलग अलग हुआ कि नहीं, वैसे ही आप प्रथम में आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई रोग ना हो, आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो, हो गया ये तो प्रार्थना भगवान ने सुनी। आप निरोग जीवन से क्या करोगे? अब यहां पोषण, अब यहां पालन, भुनक्तु माने आपके जीवन में गुणाधान विवेक आ जाए, वैराग्य आ जाए, समाधि संपत्ति आ जाए, आपके जीवन में दैवी संपत्ति का आधान हो, ये आपके जीवन का क्या है? पालन पोषण है। समझ में आया ना? आपके जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का पालन पोषण दैवी गुणों से है, माने असुरी गुणों का निवारण करना और दैवी गुणों का संपादन करना, यही आपके सहनौ भुनक्तु का अर्थ है। समझ गए ना? कितनी ऊंची प्रार्थना है। ओम सहनौ सहनावतु सहनौ भुनक्तु, गुणाधान और दोषापनयन। परम पूज्य महाराज श्री ये दो शब्द दिए हैं, दोष अपनयन, जो पहला जो है ना ओम सहनावतु, दोष अपनयन है माने दोषों का निवारण करना है, ओम सहनावतु में, और सहनो भुनक्तु में गुणाधान करना, जीवन में गुणों को निर्माण करना, स्वीकार करना। और तीसरे पाद में कहते हैं सह वीर्यं करवा वहे। हाँ, अब आपके जीवन में गुणाधान हुआ, दोष अपनयन हुआ, अब तीसरे क्रमांक पर आ गया बल, शक्ति। श्रुति कहती कि हम सब लोगों को वीर्यं करवा वहे माने बलवान बनावे, हम सबको ताकतवर बनाए। और वो कौन सी ताकत? ये आध्यात्मिक ताकत। अब यहां पर भी आप समझना, यहां पर भी आप दोनों अर्थ लगाना, आपके शरीर में बल हो, शरीर बल, आपका मनोबल, आपका बुद्धि बल, आत्म बल, अरे आपके जितने भी बल है, यहां तक कि धन बल भी, यहां धन बल, सह वीर्यम, वीर्यम शब्द का अर्थ सब लेना आप, क्योंकि आपको यदि श्रवण करना है तो आपका कान स्वस्थ होना चाहिए, और आपको ध्यान करना है तो आपकी कमर ठीक होना चाहिए, यदि कमर ठीक ना हो तो आप बैठे हुए कैसे? आपका शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए शारीरिक बल बना रहे, आपका मनोबल बना रहे, बुद्धि बल, आत्मा धन, धन ये धन भी आप बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया आपके चाणक्य ने। चाणक्य ने कहा आपके सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, और अर्थ का मूल राज्य है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है चाणक्य का। आपके जीवन में जो सुख है ना, सुख, इस सुख का मूल क्या है? धर्म है। आपके जीवन में यदि धर्म है तो आप सुखी होंगे, और उस धर्म का मूल क्या है? बोले अर्थ। आपके पास अर्थ नहीं है तो आप धर्म कैसे करोगे? आप दूसरे की मदद करना है, जप करना है, ध्यान करना है, धन आपके लिए सहयोगी है, धन सहयोगी, इसलिए धन को पुरुषार्थ का है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसलिए कहा कि धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य, राज्य राज्य अर्थ का मूल राज्य, क्योंकि राज्य माने सत्ता आपको अर्थ के संपादन में मदद करती है, अवसर प्रदान करती है। यदि सत्ता अच्छी नहीं है तो फिर आपको धन प्राप्त करने के लिए आप पुरुषार्थ करोगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। राजा तो रक्षा करता है आपकी, आपको राजा ऐसे अवसर आपको देता है जिससे कि आप धन को अर्जित करते हैं। तो नारायण ये सारी शक्तियां हैं, इसलिए वीर्यं करवावहे। हाँ, माने आपको बुद्धिमान बनाए, आपको बलवान बनाए, माने शक्ति को प्राप्त करने के लिए गुरु और शिष्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और नारायण यह बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं इसको कल भी आपको सुनाऊंगा सविस्तर। आपके पास जो बल, ये दो प्रकार के बल होते हैं, एक पकड़ने का बल और दूसरा छोड़ने का बल। आपके जीवन की साधना ये दोनों से चलती है, आपका जीवन दोनों से चलता है, पकड़ने से और छोड़ने से। आप पैदा हुए से लेके आज तक कितनी चीजें पकड़ी, बहुत, कोई गिनती है क्या? और कितनी चीजें छोड़ी, कोई गिनती है? आप बैठ करके सोचो कि पैदा हुए से लेके अभी तक हमने कितनी चीजें पकड़ी और कितनी चीजें छोड़ी। दोनों चीजें पकड़ी छोड़ी और छोड़ते छोड़ते पकड़ते पकड़ते यहां तक आए। आपने कितनी साड़ियां पहनी? अच्छा, किसी साड़ी के लिए आपने झगड़ा किया होगा, वो साड़ी है कि नहीं आपके पास? बचपन में किसी खिलौने के लिए आपने झगड़ा किया होगा, वो खिलौना है कि नहीं अभी? अरे कितने खिलौने आए, कितने खिलौने गए, कितने कपड़े पकड़े, कितने गए। ये छोड़ना पकड़ना, छोड़ना तब ये जीवन है। ऐसे अध्यात्म में भी आपको कुछ पकड़ना है और आपको कुछ छोड़ना, और उन दोनों का मूल क्या है? वीर्यम। इन दोनों का मूल है। आप बल के बिना न पकड़ सकते हैं और न, इसलिए यहां श्रुति से, ये श्रुति परमात्मा से प्रार्थना करते हैं गुरु और शिष्य के रूप में कि आप हमको पकड़ने का भी बल दो और छोड़ने का भी। आप कहते हो ना कि महाराज क्रोध करना छोड़ नहीं रहे क्योंकि छोड़ने का बल ही नहीं है। समझे? छोड़ने के लिए भी बल चाहिए, छोड़ने के लिए भी ताकत चाहिए, और उस ताकत को, उस बल को पाने के लिए भगवान से प्रार्थना है। बड़ा सुंदर मंत्र है। शेष आप कल सुबह सुनेंगे, सायं आप गोपी जीत के ऊपर प्रवचन सुनेंगे 6 से 7:30। अभी आप नित्य क्रम में भगवान शंकर के पास अपने मन को पहुंचा देंगे। आप बनारस में हैं, केदारनाथ, रामेश्वरम, बहुत सुंदर सुंदर ज्योतिर्लिंग आपके सामने हैं, महाकाल भी हैं उज्जैन में। आप स्थिर मन करना, क्योंकि आप घर में बैठ के जप नहीं कर पाते हैं, ये आध्यात्मिक स्थान है। समूह में बैठकर आप जब जप करते हैं तो आपका वो जप अनंत गुना फल आपको प्रदान करता है। अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का हम लोग जप करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।